अध्याय एक का शेष भाग। समुदाय के इस परिवर्तन ने और अधिक सामाजिक, आर्थिक तथा सैद्धांतिक तनावों को जन्म दिया। कुछ मध्यम व निम्न स्तरीय समुदाय बहुत अधिक शिक्षित थे तथा उन्हें अपने गुणों और अधिकारों का ज्ञान था। एक महत्वपूर्ण समस्या उनकी नियुक्ति से जुड़ी हुई थी, क्योंकि बाकुफू और हान प्रशासन में योग्यता के स्थान पर सामाजिक श्रेणी के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त उच्च व निम्न स्तरीय समुदाय, समुदाय तथा मालिक विहीन समुदाय के बीच में मतभेद किया जाता था। महत्वपूर्ण पद प्रमुख समुदायों को दिए जाते थे। इस कारण निम्न स्तरीय समुदाय नवयुवकों में निराशा बढ़ती जा रही थी तथा 19वीं शताब्दी में वे परिवर्तन के पीछे महत्वपूर्ण तत्व सिद्ध हुए। एक महत्वपूर्ण इतिहासकार जीबी सैनसम ने यह कहा है कि तोकुगावा विरोधी आंदोलन के पीछे जो प्रमुख कारण थे और जिनके परिणाम स्वरूप बाकुफू का पतन हुआ, उनमें नवयुवक समुदायों की महत्वाकांक्षा प्रमुख थी। इनमें से अनेक ने दायमियों को छोड़ दिया और वे स्वतंत्र साधारण व्यक्तियों की तरह रह रहे थे। वर्ग संरचना की जड़ता ने उन्हें बेचैन कर रखा था तथा वह इस वर्गीकृत संरचना से अधिक स्वतंत्रता चाहते थे। जिन नवयुवक नेताओं ने तोकुगावा पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा बाद में मेजी काल में नेतृत्व प्रदान किया, वे इसी निम्न स्तरीय समुदाय व नेता विहीन समुदाय वर्ग से थे। उन्हें इस बात का दुख था कि जहां बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति दुख और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, वहीं मूर्ख और भ्रष्टाचारी धन और ऐश्वर्य को हड़प चुके थे। इनमें से अनेक निम्न स्तरीय समुदाय शिक्षित अर्थात सक्रिय नाम से जाने जाते थे। वे स्वभाव से कुछ भी कर सकते थे तथा अपने निश्चय में अटल थे। तो कुगावा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट इन व्यक्तियों ने जापान को नेतृत्व प्रदान किया। चूंकि भक्ति या निष्ठा एक व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर हान के प्रति थी, जब कॉमोडोर पेरी के आगमन से राष्ट्र को धमकाने वाला संकट उत्पन्न हुआ, तब इन्होंने अपने निष्ठा को हान से सम्राट की। इस कारण जब कॉमोडोर पेरी के आगमन से राष्ट्र को धमकाने वाला संकट उत्पन्न हुआ, तब इन्होंने अपने निष्ठा को हान से राष्ट्र की ओर बदल दिया। जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा, इस व्यथित वर्ग जो शोगुनेत से बदला लेने पर तुला था के पर्याप्त समर्थन तथा सक्रिय सहयोग के बिना सामंतवाद के अंत की प्राप्ति यदि असंभव नहीं, कहीं अधिक कठिन तो अवश्य होती। किसान भी उतने ही दुखी थे। वे अपनी इच्छानुसार फसल नहीं उगा सकते थे। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे राष्ट्र के लिए मुफ्त श्रम दान देंगे। इस तरह स्थानीय मार्गों की बनवाई तथा डाक को ले जाने में उन्होंने अपना समय देना पड़ता था। अधिकांश किसान तो इतने गरीब हो चुके थे कि उन्हें अपनी पुत्रियों को वेश्यावृत्ति की ओर धकेलने पर मजबूर होना पड़ता था। अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा बचाने के लिए कई किसानों ने जन्म के समय ही अपनी पुत्रियों को मौत के घाट उतारना आरंभ कर दिया। इस प्रथा को माबिकी के नाम से जाना जाता है। परंतु कृषि के वाणिज्यीकरण के साथ ही धनी किसानों का एक नया वर्ग उभरा। इन्हें गोनो अथवा खाते पीते किसानों के नाम से जाना जाता था। ग्रामीण उत्पादन से उन्होंने लाभ कमाया था तथा उससे इन्होंने समुदाय वर्ग के समकक्ष जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा देकर तथा अपने मनोरंजन के लिए प्रमुख बड़े शहरों में जाकर उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर ली थी। इस सामाजिक प्रतिष्ठा के परिवर्तन के कारण उनका समुदाय से तनाव बढ़ गया तथा गरीब किसान भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। कारीगर भी इसी उधेड़ बुन में थे। एक लंबे समय तक स्थापित शांति के परिणाम स्वरूप बनवाई का कार्य समाप्त हो गया था। इस कारण अकुशल कारीगर बेरोजगार हो गए। कुशल कारीगरों का जीवन निर्वाह भी कठिन हो गया। क्योंकि उनके संरक्षक समुराय स्वयं भी गरीब हो गए थे। चोनिन, जिनसे जापानी समाज ईर्ष्या करता था, अब शक्तिशाली हो चुके थे। शहरी विकास तथा शौकीन कोताय व्यवस्था ने व्यापार को बढ़ावा दिया और इससे मुद्रा का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया। एडो के आसपास अनेक व्यापारिक संस्थानों का विकास हुआ। यह स्थिति ओशाका में भी देखी गई। यह विकास दायमियों, समुरायों और शहरी जनसंख्या की मांग पूर्ति के लिए हुआ था। इस कारण चेनिनों की संख्या बहुत अधिक हो गई तथा वे महत्वपूर्ण बन गए। शौकीन कोताय व्यवस्था के निहित व्यय की पूर्ति के लिए दायमियों अपने हानों में निवासित किसानों द्वारा उत्पादित चावल का अधिकांश हिस्सा लेकर उसे ओसाका तथा दूसरी शहरी मंडियों में बेचने लगे। इस कारण ओसाका वितरण का प्रमुख केंद्र बन गया था और यहाँ के फ्यूदाशाशी अथवा चावल व्यापारी सबसे अधिक समृद्ध हो गए। वे मूल्यों को निर्धारित करने की स्थिति में थे ही, कई बार वे मूल्यों को निर्धारित करने की स्थिति में तो थे ही, कई बार व्यापारिक लेन देन में दायमियों को धोखा भी देते थे। इस अवस्था पर टिप्पणी करते हुए पीटर डूस ने यह स्पष्ट किया है कि चावल व्यापार में संलग्न व्यापारिक परिवार तोकुगावा जापान के व्यापारी राजकुमार बन गए। द मर्चेंट हाउसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिच ट्रेड सून बिकम द मर्चेंट प्रिंस ऑफ तोकुगावा जापान। चोनिन प्रमुख शहरों में रहते थे तथा अधिकतर बैंक व्यवसाय, वित्त व्यवस्था, मुद्रा विनिमय, करेंसी एक्सचेंज व थोक व्यापार होलसेल ट्रेड में सक्रिय थे। इस प्रकार चोनिन के पास जो शक्ति केंद्रित हुई उसके कारण वे दायमियों, समुरायों, दुकानदारों तथा यात्रियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल रहे। वे इन सभी वर्गों को उधार देते थे। बाद में तोकुगावा काल में चोनिन के पास जो धन आया उसके कारण वे समुराय जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने शमशीर, जो समुराय की प्रतिष्ठा का चिन्ह थी, पहनना शुरू कर दिया। अपने पुत्रों को गोद देना तथा समुराय द्वारा बेचे जाने वाले शस्त्रों को क्रय करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वे भूमिपति भी बन गए। इस तरह अभी तक शोषित व गरीब चोनिन के स्तर और शक्ति में जो परिवर्तन आया उसने तोकुगावा कालीन सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। इससे यह सिद्ध हो गया कि तोकुगावा काल में समाज और अर्थव्यवस्था जड़ या स्थिर नहीं थे। 1850 ईस्वी के दशक में जापानी समाज वह नहीं था जो 1600 ईस्वी में था। व्यवहार संहिता बुशिदो या चोनिंदो का पालन अब संभव नहीं था। कठोर चार वर्गीय सामाजिक व्यवस्था में नव स्थापित सामाजिक संबंधों का समन्वय अब कठिन था। प्रत्येक वर्ग सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक समस्याओं का सामना कर रहा था तथा तोकुगावा काल से असंतुष्ट था। समुराय इसलिए दुखी थे क्योंकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वोच्च थी, परंतु आर्थिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। अपनी बढ़ती हुई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए उन्होंने धनी किसानों तथा व्यापारियों से उधार लेना शुरू कर दिया। इस तरह उच्च वर्ग जब निम्न वर्ग का देनदार बन गया तब तोकुगावा व्यवस्था के निहित सिद्धांत स्वयं ही धराशायी हो गए। कारीगर व किसान इसलिए दुखी थे क्योंकि भोजन की कमी के साथ साथ उनकी गरीबी बहुत अधिक बढ़ गई थी। चुनिन की असंतुष्टि का प्रमुख कारण था कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा निम्न थी तथा धनी से धनी व्यापारियों को भी अनेक प्रकार से हस्तक्षेप, उच्च करों और वाकूफों द्वारा निर्धारित अनेक पाबंदियों का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तोकुगावा समाज में प्रत्येक वर्ग असंतुष्ट था तथा परिवर्तन की आशा कर रहा था। विभिन्न वर्गों के बीच स्थापित संबंधों तथा तोकुगावा व्यवस्था के खिलाफ उत्पन्न नफरत ने दायमियों रोनिन चोनिन गठबंधन को जन्म दिया और इसके परिणाम स्वरूप तोकुगाओ का पतन हो गया। जैसा कि सैनसम ने कहा है कि व्यापारियों और समुरायों द्वारा प्रकट व्याख्याओं ने दूसरे कारणों के साथ मिलकर धीरे धीरे एक निश्चित व महत्वपूर्ण क्रांति को जन्म दिया, जो सामंतीय सरकार के विघटन के चरमोत्कर्ष तक पहुंच गई। ए स्लो इरेसिस्टिबल रिवॉल्यूशन कल्मिनेटिंग इन द ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडल गवर्नमेंट। एक लंबे समय तक तोकुगाओ ने जापान में सफलतापूर्वक साकोकू देश को बाहरी प्रभाव से एकांतवास रखने की नीति को अपनाया था। तोकुगाओ द्वारा इस नीति के पालन का एकमात्र उद्देश्य अपनी सत्ता को बनाए रखने तथा देश को विदेशी संघर्ष से बचा रखने के लिए किया गया था। इस भय से कि कहीं विदेशी विचार व ईसाई धर्म सामाजिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त न कर दे, तोकुगाओ ने दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित नहीं किए। जापानियों को विदेश भ्रमण की आज्ञा से वंचित कर दिया गया तथा विदेशी पुस्तकें, विशेष रूप से पश्चिमी देशों की पुस्तकें, जापान में लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जापान के द्वार विदेशी व्यापार के लिए बंद कर दिए गए थे। परिणाम स्वरूप जापान बाहरी वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास से भी वंचित ही रहा। व्यापारिक संभावनाओं तथा अवसरों पर प्रतिबंध लगाकर तोकुगाओ ने जापान में जो आर्थिक विकास की सामर्थ्य थी उसे भी सीमित कर दिया। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों और 250 वर्षों की स्थापित शांति के दौरान जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप साकोकू नीति को बनाए रखना अब कठिन था। अगर जापान के द्वार पर कोई बाहर से आकर दस्तक नहीं देता तो आंतरिक आहट ही जापान को खोल देती। पैरी के आगमन ने न केवल एक मौका प्रदान किया, हैड देयर बीन नो नॉक फ्रॉम आउटसाइड द प्रेशर फ्रॉम विद इन वुड हैव ओपेंड जापान। पेरीज अराइवल प्रोवाइडेड ओनली एन ओकेजन। रूस व इंग्लैंड ने 1793, 1808 और 1825 ईस्वी में जापान में अपने समुद्री अभियान भेजे, परंतु उन्हें न केवल वापस भेज दिया गया बल्कि बाकूफू अपनी साकोकू की नीति बनाए रखने में दृढ़ संकल्पित रहा। अफीम युद्ध में चीन की हार और वहां 5 बंदरगाहों के खुलने के बाद जापान में एक आने वाले संकट के प्रति मानसिक सतर्कता पैदा होने लगी। जापान का खुलना अब इतिहास के निहित ही था। 1844 में नागासाकी के डच व्यापारियों ने बाकूफू को स्थिति से अवगत कराते हुए यह परामर्श दिया था कि इससे पहले कि देश को पश्चिमी देश खुलवाएं, स्वयं ही खोल देना चाहिए। जुलाई 1853 ईस्वी में जब कॉमोडोर पैरी 4 अमेरिकी जहाजों के साथ आया तो बाकूफू के लिए एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। एदो में राजनैतिक माहौल विभाजित तथा अनिश्चितता से भरपूर था। उस समय जापान में विदेश विरोधी भावना प्रबल थी। शोगुन इस स्थिति से निपटने के लिए असमर्थ था। दाइमियो द्वारा यह विचार प्रकट किया गया कि पश्चिमी मांगों को अब नज़रअंदाज करना कठिन था तथा जापान को अलग थलग रखने की नीति अब जारी नहीं रखी जा सकती थी। उसके लिए युद्ध की स्थिति से बचना भी आवश्यक था। 1854 ईस्वी में जब पैरी दूसरी बार 8 जहाजों के साथ जापान पहुंचा, तब बाकूफू के पास इसके अतिरिक्त कोई और चारा न था कि उसकी मांगों को स्वीकार ले। परिणाम स्वरूप उसने 1854 ईस्वी में कानागावा की संधि कर ली। इससे शोगुन की दशा अति संवेदनशील हो गई। उसने क्योटो जाने का निश्चय कर लिया, जिससे सम्राट से विचार विमर्श किया जा सके तथा की गई संधि की अनुमति ली जा सके। वास्तव में अनेक जापानी इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि शोगुन ने सम्राट की सारी शक्ति हड़प ली तथा वह बिना वैधानिक अवसरों तथा वह बिना वैधानिक अधिकारों के शासन कर रहा था। यहाँ तक कि पैरी को यह भी पता नहीं था कि जिससे वह सम्राट कह रहा था वह वास्तव में शोगुन ही था। 1856 ईस्वी में अमरीकी विशेष दूत काउंसिल जनरल टाउनसेंड हैरिस शिमोदा आ पहुंचा। 1857 ईस्वी में नई संधि की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें नई संधि बंदरगाहों को खोलने, चुंगी अधिकारों तथा एदो में अमेरिका के राजदूत को भेजने की बात कही गई। जब सम्राट कोमेई से इस संधि को स्वीकृति देने को कहा गया तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया। बाकूफू से मांग की कि वह इस बार दोबारा ध्यान दे तथा दूसरे दायमियों से इसके बारे में विचार विमर्श करे। इसके अतिरिक्त सोगुन ने यह संधि करके स्वयं को ऐसा गुनाहगार सिद्ध कर दिया जिसने शाही शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त विश्वास से धोखा किया था। 1858 ईस्वी में की गई संधि व उसके बाद की घटनाओं ने तोकुगावा के पतन की गति को तीव्र कर दिया। इस संधि ने यह स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार शोगुन सार्वजनिक मुद्दों को अपने हिसाब से ही तय कर रहा था। शाही अनुमति प्राप्त किए बिना जिस तरह बाकूफू के प्रमुख अधिकारी ई नाओसुके ने संधि की, उसी तरह परिणाम स्वरूप उन्हें दरबारी कुलीनों, दायमियों, समुरायों तथा राजभक्तों के विरोध तथा प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उनमें शोगुन विरोधी भावना और भी प्रबल हो गई तथा यह मांग की गई कि शोगुन को हटाकर सम्राट को पुनः स्थापित किया जाए। इससे देश में अनिश्चित तथा विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। बीमार शोगुन के उत्तराधिकारी के चयन के प्रश्न पर जन असंतोष और भी तीव्र हो गया, क्योंकि शोगुन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। शोगुन की ओर से इस बारे में ई नाओसुके की गतिविधियां यह स्पष्ट कर रही थी कि वह अपने हिसाब से ही कार्य कर रहा था। राजदरबार की अनुमति और जनता के सहयोग के बिना जब उसने ई एमोची का चयन किया तो इससे राजभक्त और भी अप्रसन्न हो गए। परिणाम स्वरूप सभी विदेश विरोधी इकट्ठे हो गए। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब शोगुन ने मितो, ओवारी तथा हिजेन के दायमियो को बंदी बनाने का आदेश दिया। यह आदेश शाही दरबार के मंत्रियों और कुलीनों को इसलिए दिया गया था क्योंकि वे शोगुन की नीतियों का विरोध कर रहे थे। परिणाम स्वरूप हाशिमोतो, सानाई और जोशीदा सोइन जैसे देशभक्तों को कैद कर लिया गया व अनेकों को फांसी तथा देश निकाला दे दिया। इस सजा ने बाकूफू के पतन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। इन कठोर और अमानवीय नीतियों ने बाकूफू विरोधी भावना को और भी तीव्र कर दिया। सोनोजोई आंदोलन के समर्थक शोगुन का विरोध करने लग गए। यह आंदोलन 1850 ईस्वी के दशक में विदेश विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। इसके समर्थकों में मध्यम और निम्न श्रेणीय समुरायों और धनी किसानों के पुत्र थे। अनेक रोनिन तथा निम्न स्तरीय समुराय जो शीशी बन गए ने पैरी के प्रश्न का विरोध किया और उन्माद की स्थिति में अनेक बाकूफू अधिकारियों की हत्या इस कारण कर दी कि उन्होंने अमेरिका के हैरिस के साथ संधि करके देश को विदेशियों के लिए खोल दिया था। उन्होंने शोगुन का विरोध किया और इस प्रकार जन साधारण की आंखों में तोकुगावा शासन निंदा का पात्र बन गया। इन भावनाओं को आधार अनेक बुद्धिजीवियों ने प्रदान किया था। यह मीतो गुट के इतिहासकारों के पीछे थे। उस समय दाए निहोनिश या महान जापान का इतिहास का संकलन किया गया। इससे जन साधारण में राष्ट्रीय संचेतना का विकास हुआ। स्थानीय बुद्धिजीवियों और कन्फ्यूशियसवादियों ने एक साथ मिलकर सम्राट के प्रति भक्ति भावना को प्रबल किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शोगुन ने उन अधिकारों को हड़प लिया था जो वास्तव में सम्राट के थे। कोजिकी और निहांगी प्रेरणा के स्रोत बन गए जिन्होंने लोगों को शोगुन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार किया। वह तात्कालिक कारण जिसने इस शासन का पतन कर दिया तोकुगावा के भविष्य से संबंधित था। इस प्रश्न ने नरम और गरम पंथियों को विभाजित कर दिया। एक गुट ने शोगुनेत को समाप्त करना स्वीकार किया, परंतु दूसरा गुट शोगुन और सम्राट के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करवाना चाहता था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों गुटों ने अलग-अलग तरीकों को अपनाया। गरमपंथी चोशु समुदाय के आसपास एकत्रित होकर यह मांग करने लगे कि विदेशियों को बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने बाकुफू की निंदा भी की। शोगुन का अंत करने के लिए उन्होंने शाही परिवार का समर्थन किया। दूसरी ओर नरमपंथियों ने दरबार और शोगुन की गुटबंदी के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया। इसका प्रतिनिधित्व सत्सुमा वर्ग द्वारा किया गया था। शाही दरबार द्वारा इन गतिविधियों पर नजर रखी गई। समय तथा परिस्थितियों के अनुसार कभी एक व कभी दूसरे गुट का समर्थन किया गया। 1861 ईस्वी में जब पश्चिमी शक्तियों के साथ शाही दरबार ने प्रत्यक्ष रूप से संधि की, तब शोगुन की प्रतिष्ठा और शक्ति को ठेस पहुंची। 1866 ईस्वी में सत्सुमा और चोशु समुदाय इकट्ठे हो गए तथा उन्होंने सामंतीय ढांचे को समाप्त करने का फैसला कर लिया। इस कार्य में किदो कोइन, ओकुबू तोशीमिची और सौगो तकामोरी नामक तीन शिशी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में सामने आए। बाद में यही मेजी शासन के स्तंभ बने। तोकुगावा शासन के ताबूत की अंतिम कील 14वें शोगुन इएमोची की मृत्यु सिद्ध हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समय तोकुगावा का साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि 15वें शोगुन कोइकी स्वयं ही सम्राट तंत्र के पक्ष में थे। चूंकि परिस्थितियां और अधिकांश व्यक्ति शोगुनेत की समाप्ति की कामना कर रहे थे, इसलिए नए शोगुन ने 7 नवंबर 1967 ईस्वी को अपने शक्तियों की तिलांजलि देने की घोषणा कर दी। इस प्रकार 265 वर्षों के बाद तोकुगावा शासन की समाप्ति हुई तथा एक बार फिर सम्राट के अधिकारों को पुनः स्थापित कर दिया गया।